गोलोक एक्सप्रेस के स्पिरिचुअल गपशप पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरी बोल।
जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज द सोल, हरि हरि बोल हरि हरि बोल। शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। न जय श्री कृष्णा जय श्री हरि। ना शास्त्र पर ना शास्त्र पर ना धन पर ना किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है, हे प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। घर घर मंदिर हर मन मंदिर, घर घर मंदिर हर मन मंदिर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता की जय, गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। आज के सत्संग में आप सबका स्वागत है। जो व्यूअर्स हमें यूट्यूब के माध्यम से वॉच कर रहे हैं और पॉडकास्ट के माध्यम से हमें लिसन कर रहे हैं, आप सब भी हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं। तो आप सबका भी आज के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हो, हमारा सरल भगवद गीता सार रूप में कोर्स आरंभ हो चुका है। आजकल हम फाउंडेशन कोर्स पर चर्चा कर रहे हैं। कल आपने जाना था कि कंप्लीटली हैप्पी रहने के लिए हमें कंप्लीटली हेल्दी रहना पड़ेगा, जिसमें आपने समझा था कि कंप्लीट हेल्थ के 5 कंपोनेंट हैं। जब हमारी गुड स्पिरिचुअल हेल्थ होगी, गुड मेंटल हेल्थ होगी, गुड फिजिकल हेल्थ होगी, प्लस गुड फैमिली हेल्थ एंड एट लास्ट गुड फाइनेंशियल हेल्थ, जब पांचों के पांचों में बैलेंस बन जाएगा तो हम कंप्लीटली हैप्पी रहना शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कल आपने ये भी समझा था कि इन जो सारी की सारी हेल्थ है, इनमें जो स्पिरिचुअल हेल्थ है वो इसका बेस है, इसकी बेसिक फाउंडेशन है। जब स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होगी तो आगे की जो हमारी 4 हेल्थ है वो ऑटोमेटिकली अच्छी होना शुरू हो जाएंगे। बट क्वेश्चन अराइज होता है कि ये स्पिरिचुअल हेल्थ कैसे अच्छी होगी? तो भगवत कृपा से गोलोक एक्सप्रेस ने एक बहुत ही प्यारा मॉडल डेवलप किया है, जिसका नाम है 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, अध्यात्म के 4 सितंभ। देखिए, ये 4 सितंभ ऐसे हैं जैसे किसी बिल्डिंग को प्लेस करना हो, टिकाना हो, या किसी चेयर को, जो टेबल को, कहीं पर भी हमने टिकाना है तो उसके लिए उसको 4 पिलर्स की एक नीड होती है। अगर 4 पिलर्स अच्छे से उसके होंगे तो वो जो बिल्डिंग है, जो टेबल चेयर है, अच्छे से प्लेस हो जाती है। तो उसी तरह ये जो 4 सितंभ हैं, 4 पिलर्स हैं, फर्स्ट वन इज सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार। ये अध्यात्म की जो हमारी प्रोग्रेस है, जो हमारी लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ को अच्छे से हम आगे लेकर जा सके, उसको प्रोग्रेस के रास्ते में बढ़ाएं, उसके लिए ये 4 पिलर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चारों में बैलेंस लाना बहुत जरूरी है। और फ्रेंड, हमेशा याद रखना है, हमें इसको इसी सिमेट्री में ही हमेशा करना है। ये नहीं हो सकता कि पहले सदाचार आएगा, फिर सेवा, या फिर सत्संग। नहीं, ये इसी सिमेट्री में आएंगे। जैसे सबसे पहले सत्संग, फिर उसके बाद साधना, देन सेवा, फिर सदाचार। जब हम इन चारों को रेगुलरिटी के साथ करते जाएंगे ना, तो जो फ्रेंड्स कल आपने समझा ना, कंप्लीटली हैप्पी कैसे रहना है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। आप एक सुपर पॉजिटिव और हैप्पी लाइफ को लीड करना शुरू कर दोगे। जो आपने कल जो बातें थ्योरी में समझी है उसको आप प्रैक्टिकली फील करना शुरू हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चलते हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है, सत्संग। उसको पहले हम सबसे पहले समझते हैं। सत्संग, देखिए जी, सत्संग जो वर्ड है ना, ये दो वर्ड से बना है, सत प्लस संग। सत क्या है? सच, एब्सोल्यूट ट्रुथ। और संग मीन साथ, एसोसिएशन। जब हम सत्य का संग करते हैं तो सत्य क्या है, सच क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे परम पिता परमात्मा ही है, जो इटर्नल है, जो कभी जिस जो मतलब कभी खत्म नहीं होते हैं ना। देखिए, दुनियादारी के जब हम संग करते हैं, दुनियादारी में जो जितनी भी बातें शेयर की जाती हैं वो कुछ भी सत नहीं होती है, वो सारी की सारी नाशवान ही बातें होती हैं। देखिए, हमने 20-25 साल दुनिया की जो पढ़ाई हमने की है, नो डाउट कैरियर मेकिंग थी, बट क्या उसने हमारी लाइफ के सच को बताया है ना, कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमने इंटरनली हैप्पी कैसे रहना है, ये सारी बातें हमें नहीं बताई है। पर जो भगवान, जब भगवान से जुड़ी बातों के बारे में हमें बताते हैं, वो है एब्सोल्यूट ट्रुथ। देखिए, सत्य, सत्य क्या है? देखिए, सत्य सिर्फ और सिर्फ भगवान है। जब वो लोग जिन्होंने भगवान के बारे में जान लिया है, ठीक है ना, भगवत गीता में भी जो चैप्टर 4 में के 34th वर्स में भगवान जी क्या कहते हैं, कृष्णा जी अर्जुन जी के माध्यम से हम सबको गाइड कर रहे हैं, गुरु के पास जाकर सत्य के बारे में जानो। तो वो जो गुरु है उसने क्या किया है, भगवान के बारे में जान लिया है ना, तो उसके पास जाने के बोल रहे हैं। ऐसे लोगों के संग में रहना जिन्होंने भगवान की बातें को एक्सपीरियंस कर लिया है। सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि थ्योरी में जाना है, जिन्होंने अनुभवी ज्ञान ले लिया है। देखिए, हर एक फील्ड में ना कुछ बिगनर्स होते हैं, कुछ एक्सपर्ट होते हैं, है ना। तो अगर किसी ने किसी फील्ड में एक्सपर्ट होना है तो उन बिगनर्स को क्या एक्सपर्ट की गाइडेंस नहीं लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी ना। तो उसी तरह हमारा जो पाथ है वो कौन सा स्पिरिचुअल पाथ है, भगवान के रास्ते में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें जो एक्सपर्ट है, जो संत है, जिन्होंने भगवान, जब भगवान से जुड़ी बातों को एक्सपीरियंस कर लिया है, उनके संग में रहना ही क्या है, सत का संग। मीन्स जो एक्टिविटी, जो जो पर्सन हमें भगवान के रास्ते में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, वो है सत्य का संग, सत का संग। अब देखिए, क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सत्संग हम मंदिर में जाकर ही कर सकते हैं, किसी फिजिकली हमें जाना पड़ेगा कहीं? हाँ, ये भी ठीक है, कहीं हम जाकर भी कर सकते हैं, बट सत्संग का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो हमारी फिजिकल अपेयरेंस से नहीं है, कि हम कहीं मंदिर में बैठे हैं और हमारा ध्यान लोगों के कपड़ों की तरफ जा रहा है कि किसी ने क्या डाला है ना। इंटरनली हम भगवान के साथ कनेक्ट नहीं है, बैठे हैं मंदिर में है, पर हम दुनियादारी की बातों में है, तो वो सत का संग नहीं है। सत का संग मीन्स इंटरनली मेंटली जब हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, है ना, चाहे फिर वो मंदिर हो, चाहे फिर हमारा वर्क प्लेस क्यों ना हो, वर्क प्लेस पे हम बैठे हैं, हम अपने किसी फ्रेंड के साथ भगवान की बातों को शेयर कर रहे हैं, तो वो भी तो सत का संग है। अभी हम लोग आपस में यहाँ पर बैठे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान की बातों को यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। देखिए, सत्संग की बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भक्त प्रहलाद जी थे ना, उन्होंने किनकी एसोसिएशन की थी, जब वो अपनी माता के आदू के साथ नारद मुनि जी के आश्रम में रहे, तो उनको उनके आश्रम में रहने से, उनकी एसोसिएशन में रहने से, देखिए राक्षसी कुल में पैदा हुए हैं, बट भगवान के शुद्ध भक्तों में सबसे टॉप प्रायोरिटी में उनका नाम आता है। तो उनकी जो एसोसिएशन नारद मुनि जी के साथ हुई थी, तो उन्होंने इतनी शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लिया। फिर जब भगवान जी ने हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए नरसिंह रूप को धारा था, तो फ्रेंड्स, उन्होंने जब प्रहलाद महाराज जी को पूछा कि वर मांगो, तो देखिए उन्होंने प्रहलाद महाराज जी ने क्या मांगा, छोटा सा बच्चा है, क्या मांग रहा है भगवान से, वो कहता है मुझे भक्तों का संग देना। तो इतनी इंपॉर्टेंस है, 5 साल का बच्चा भी समझ गया कि जो भक्तों का संग है वो हमें कभी भी नीचे नहीं गिरने देता है, वो हमेशा हमें एक राइट गाइडेंस देता है। देखिए, सारे शास्त्र क्या कहते हैं, साधु संग सर्व शास्त्र कहते, तो साधु संग की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए, हम अपने बच्चों को भी गाइड करते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जिस संगत में हम रहते हैं ना, हमारे अंदर वैसे ही गुण आना शुरू हो जाते हैं। तो जब हम सत्संग मीन्स भक्तों के संग में रहेंगे, तो हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी डिजायर्स पैदा होती हैं जो भगवान के रास्ते में हमें लेके जाती हैं। सबसे पहले डिवोशनल डिजायर आती हैं, जब हम भक्तों के एक्सपीरियंसेस को सुनते हैं, वो इतनी माला कर रहे हैं, वो इस तरह से भगवान का नाम लेते हैं, तो हमारे अंदर क्या आती है, डिवोशनल डिजायर आना शुरू हो जाती है। फिर हमें कुछ अनुभूतियां होना शुरू हो जाती हैं, जो पहले हमें लगता था कोइंसिडेंटली ऐसे हो गया, फिर हमें लगता है नहीं, ये तो भगवान की कृपा शक्ति से ऐसे हुआ है ना, डिवाइन एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो जाते हैं। फिर दुनियादारी में हम कहेंगे डिटैचमेंट आना शुरू हो जाती है, हम डिस्ट्रक्टिव से डिवोशन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, नीड ग्रीड में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। मींस जो हमारी श्रद्धा का ना छोटू सा पौधा होता है ना भगवान के रास्ते में, तो जब हम सत्संग लगाते हैं ना, तो फ्रेंड्स वो एक ना छोटू पत्ते के आगे हम क्या करते हैं, ट्री गार्ड लगा देते हैं ना, वो सत्संग वो ट्री गार्ड का काम करता है ना, वो श्रद्धा के पौधे को ना एक किस्म का ऐसा एनवायरमेंट देता है कि वो एक निष्ठा का बड़ा पेड़ बन जाता है। फिर देखिए, जो लोग पहले हम बातों में आ जाते हैं, तुम क्या भी इस रास्ते में चल पड़े हो, सत्संग सुन रहे हो, तो हम क्या होना शुरू हो जाते हैं, हम उससे विचलित फिर नहीं होते हैं। पहले हम विचलित हो जाते थे, फिर हम विचलित होना बंद, इस सत्संग ये रोल प्ले करना शुरू कर देता है कि हम अपने रास्ते में स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। देखिए, सत्संग से और क्या होता है, हमारे डाउट्स क्लियर होना शुरू हो जाते हैं, जो हमारे भक्ति मार्ग में होते हैं ना, जैसे आपने अभी सत्संग के माध्यम से ही कुछ मिसकंसेप्शन को समझा, वैसे वाले डाउट्स भी क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। और सत्संग से हमारे मनों में भी ना कुछ क्वेश्चन चल रहे होते हैं, कि कुछ भी मन में चल रहा होता है, तो जब हम सत्संग लगाते हैं, आप लोगों ने भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा, तो उनकी आंसरिंग होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को पता होता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, वो फिर स्पिरिचुअल गाइड के बुद्धि में जाकर वाणी के माध्यम से ना हमारी आंसरिंग कराना शुरू कर देते हैं। और एक और चीज, बिन सत्संग विवेक ना हुई, बिना सत्संग के ना हमें विवेक नहीं आ सकता है कि हमें क्या करना है, कहाँ कितना करना है, कैसे करना है ना, किस तरह का हमने अन्न ग्रहण करना है, कहाँ पर कितनी बात करनी है, किस तरह की बात करनी है, ये सारी चीजों का जो हमें कहते हैं ना विवेक, वो सिर्फ और सिर्फ सत्संग के माध्यम से ही आता है। और जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया ना, जो मेरी फर्स्ट रियलाइजेशन है, कि जब हम रेगुलरिटी के साथ सत्संग सुनना शुरू कर देते हैं ना, तो जो दुनियादार की बातें हर टाइम दिमाग में घूमती रहती है ना, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, वो रिप्लेस होना शुरू हो जाती है। मीन्स एक्सेसिव थिंकिंग किस में रिप्लेस होना शुरू हो जाती है, भगवान की बातों में, कि सत्संग में ये हुआ था, कृष्णा ने अर्जुन से ऐसे कहा था, तो ये सारी बातें उसमें आना शुरू हो जाती। मीन्स हम एक्सेसिव थिंकिंग, जिसको हम कहते हैं कि डिप्रेशन का जो एक हम कहते हैं ना छोटू सा पौधा एक्सेसिव थिंकिंग, वो उखड़ कर बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और हम एक पॉजिटिविटी की तरफ हम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मीन्स हमारा दृष्टिकोण भी चेंज होना शुरू हो जाता है। तो सत्संग की इतनी महिमा है, सत्संग से हमें फिर मोटिवेशन मिलती है। किस चीज की मोटिवेशन मिलती है, साधना की तरफ बढ़ने की। देखिए, जो सत्संग है ना, उसमें क्या है, श्रवण, उसमें जो हमारा स्पिरिचुअल गाइड होता है ना, उसकी एनर्जी लगती है, वो हमसे बातें शेयर करते हैं, हम सिर्फ श्रवण करते हैं। तो जो श्रवण है, वो नवधा भक्ति की पहली, हमारी पहली सीढ़ी है। तो श्रवणम के बाद क्या आता है, कीर्तनम, मीन्स हम अगले स्टेप पर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। श्रवण करने से ही हमारे अंदर साधना की जो है ना, अंदर हमारे डिजायर पैदा होना शुरू हो जाती है, मोटिवेशन आना शुरू हो जाती है भगवान के रास्ते में कुछ करने की, कुछ करके दिखाने की। तो फिर आता है हमारा सेकंड कंपोनेंट, जो सेकंड इम्पोर्टेंट पिलर है, वो है साधना। साधना को हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे सत्संग हो गया एक स्कूल, जहां पर टीचर पढ़ाता है और बाकी स्टूडेंट्स उसको सुनते हैं, और जो साधना है, जो टीचर ने पढ़ाया है, घर आकर उसके ऊपर जो बच्चा खुद से सेल्फ स्टडी करता है, होमवर्क करता है, वो है साधना। मींस एक पर्सन की अपनी पर्सनल जो उसकी प्रैक्टिसेस हैं, उसको हम कह सकते हैं कि खुद से वो जो करता है वो है, जिसमें एक जो इंडिविजुअल है उसकी अपनी ही मेहनत लगती है, वो अपने लिए जो सत्संग में बताया गया है उसके ऊपर फिर वो वर्क करना शुरू कर देता है। देखिए साधना का मतलब क्या है, हार्ड वर्क करना, परिश्रम करना, है ना, प्रैक्टिसेस करना। किसके लिए ये सारी प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, किसको साधने के लिए ये सारी प्रैक्टिसेस की जा रही हैं? देखिए कौन बिगड़ा हुआ है, हमारा एक छोटा सा जो मन है ना, बिगड़ा हुआ, चंचल सा, है ना, घोड़ा टाइप हम कह सकते हैं, चंचल एक बच्चा है, घोड़ा है, जंगली घोड़ा। वो हमेशा क्या करता है, हमेशा गलत जगह पर ही जाता है, नेगेटिविटी की तरफ जाता है, गंदगी की तरफ जाता है। हमें हमारी लाइफ में बहुत सारे अगर पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे ना, ब्लेसिंग्स होंगे, बट अगर एक एक भी हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं, वो मन हमें वही चीज को दिखाएगा, उस नेगेटिव चीज को ही दिखाएगा जो हमारे पास मींस नहीं है, उसी की तरफ हमें लेके जाता। तो वो जो बिगड़ा हुआ मन है ना, जो हमारी ये पांच इंद्रियां, आंख नाक कान, पांचों इंद्रियों का जो स्वामी है, उसको कंट्रोल करना, उसको ट्रेंड करना, मीन साधना टू ट्रेंड आवर माइंड, अपने मन को नियंत्रण में लाना। तो उस मन को नियंत्रण में लाने के लिए जो जो हम सूटेबल प्रैक्टिसेस करते हैं, दैट इज साधना। तो मन को नियंत्रण में करने के लिए देखिए वैसे तो बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बताई जाती, बट हम गोलोक एक्सप्रेस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चार स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के ऊपर हम ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। सबसे पहले नाम जाप, मंत्र मेडिटेशन, भगवान का नाम लेना, किसी मंत्र का रेगुलरिटी से जाप करते रहना, चाहे फिर हम उसको स्ट्रक्चर वे में कर रहे हैं, चाहे अनस्ट्रक्चर वे में। स्ट्रक्चर वे में मींस माला के ऊपर, टेलीकाउंटर के ऊपर एक जगह बैठकर अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, और अनस्ट्रक्चर वे में चलते फिरते, उठते बैठते, ट्रैवलिंग में, किचन में, किसी तरह से भी। तो देखिए ये जो नाम जप है ना, वो हमारे मन को बहुत ज्यादा ट्रेन करता है। जो मन हर टाइम पुरानी पुरानी बातें सोचता रहता है ना, वहां से उसको निकाल कर भगवान के स्मरण की तरफ, भगवान के नाम को गुनगुनाने की तरफ उसको हम लेके जाते हैं। देखिए हमारे शास्त्रों में भी क्या कहा जाता है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। तो ये जो नाम जाप है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट साधना का फर्स्ट कंपोनेंट है। देखिए हम गोलोक एक्सप्रेस में हरे कृष्णा महामंत्र को जहां पर प्रमोट करते हैं, पर आपका जिस चीज में फेथ है, जिस भगवान के ऊपर, जिस मंत्र के ऊपर फेथ है, बस उसको आपने रेगुलरिटी के साथ अपने स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर वे में करते रहना है, फिर आपको उसके फायदे अपने आप नजर आना शुरू हो जाएंगे। बट एक चीज याद में रखनी है, मन लग रहा है चाहे नहीं लग रहा है, नाम जाप हमने करते ही जाना है। आपने इससे रिलेटेड भी जो हमारी मिसकंसेप्शन थी उसको आपने समझ चुके हो कि हमने क्यों करते जाना है, इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो नेक्स्ट जो आ जाती है हमारी साधना सेकंड नंबर पर, भोग, भोग लगाना। भोग किसको लगाना, भगवान को। देखिए क्यों लगाना भगवान को भोग, हम रोज आरती में कहते हैं कि भगवान जी आपने ही सब, तन मन धन सब कुछ तूने हमें दिया, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जो भगवान ने हमें दिया है उसको भगवान को ऑफर करना है, ऑफर इसलिए उनको थैंकफुल करना है, उनसे उनके ब्लेसिंग्स को मांगना है, ताकि वो उन्होंने जो हमें दिया है उसके लिए हम शुक्रगुजार हो, हम उनको उसके लिए थैंक यू करें। तो ये इस तरह से हमने इसको आगे लेके जाना है फ्रेंड्स। जहां पर हम ये कहते हैं कि खाने, क्योंकि हम ज्यादा खाना दिन में बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं, पानी पीते हैं, हर एक चीज का भोग लगाकर ही हमने खाना है, बट आप जो शॉपिंग कर रहे हो, कुछ भी बाजार से ला रहे हो, उसको भी भगवान को हमने अर्पित करना है। तो खाने का आपने, आप अगर हो सकता है तो घर में जो भगवान के विग्रह रखे हैं उनके आगे उनको भोजन का, जल का भोग लगाइए। अगर आपके घर में ऐसा एटमोसफेयर नहीं है तो मानसिक भोग लगाइए। तो भगवान जी तो देखिए भावग्रह जनार्दन है, तो वो हमारे भोग को ऐसे भी स्वीकार कर लेते हैं। हम तो देखिए जो हाउसवाइफ है, हमारे हाथ में तो सारी किचन खाना बनाते जाइए, और भगवान को वहीं से ही पुकार लीजिए, प्रभु भोग लगाइए, अपनी थाली में से ही जब खाने लगे 2 मिनट भगवान को याद कीजिए, उनको बोलिए प्रभु आप आइए भोग लगाइए, फिर उसको कंज्यूम करें। देखिए इस तरह से हमने भोग लगाकर ही खाना खाना है, उससे क्या होगा, हमारा जो मन है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ना हमारे कहे अनुसार चलना शुरू हो जाता है। देखिए क्या कहा जाता है, जैसा अन्न वैसा मन, जो भोग लगा खाना खाएंगे तो हमारा जो मन बिगड़ा हुआ है ना, वो धीरे धीरे डिसिप्लिन में आना शुरू हो जाता है। थर्ड जो साधना का कंपोनेंट हम यहाँ पर समझेंगे वो है व्रत, फास्टिंग करना। देखिए फास्टिंग किस चीज की, खाने की हमने फास्टिंग करनी है और सोल की हमने फीस्टिंग करनी है। व्रत का यही एक मतलब होता है कि बॉडी लेवल पर उस दिन खाने को हमने कम करना है, उसको अवॉइड करना है, जितना हमारी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है उतना कंज्यूम कीजिए, और जो सोल की फीस्टिंग है भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा लेना है। देखिए व्रत से क्या होता है, व्रत करने से हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होना शुरू हो जाती है, हमें जो ओबेसिटी वगैरह होती है डिसीजेज वो भी हमारे क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस दिन हम व्रत करते हैं ना, तो हम उस दिन कैसे अपने मन को हर टाइम कमांड करते हैं और हमारा मन कैसे हमारी बात मानता है, वो उस दिन बिगड़ा हुआ चंचल बच्चा नहीं रहता, एकदम डिसिप्लिन में आ जाता है। कभी आप लोगों ने नोटिस किया है, जब कुछ खाने का मन करता है हम फटाफट से उसको क्या करते हैं, कमांड करते हैं, नहीं, आज फास्ट है, आज ये नहीं खाना है, फिर वो खाने जाता है, नहीं जाता है, वापिस आ जाता है। तो एटलीस्ट फास्टिंग वाले दिन एक दिन भी अगर मन हमारा हमारी बात मानना शुरू कर देता है, तो धीरे धीरे फिर वो डेली हमारी बात मानना शुरू कर देता है। तो हम गोलोक एक्सप्रेस में, क्योंकि हम कृष्ण भक्त हैं, हरि भक्ति को प्रमोट करते हैं, तो उसके लिए एकादशी फास्टिंग को हम यहाँ पर रेकमेंड करते हैं। वो महीने में 2 बार आती है, तो वो 2 बार जब आप व्रत करोगे, एटलीस्ट वो 2 दिन जो मन है वो हमारे कहे अनुसार चलेगा। महीने में 2 दिन, वो 2 दिन का 20 और 30 दिन बन जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। एंड जो फोर्थ पर हम बात करेंगे वो है आरती। अपने घरों में हमने ऐसा सिस्टम बनाना है कि हम सब मिलजुल कर आरती करें। ओम जय जगदीश हरे आरती यूनिवर्सल आरती है, आपका जिसमें फेथ है आप वो आरती सारे घर में इकट्ठे बैठकर वो आरती जरूर करें, जिससे घर वाले भी हमारे इन्वॉल्व हो जाएंगे और हमारे मन को भी पता होगा कि हम, मैंने भगवान का नाम इस समय लेना है, सबने मिलजुल कर लेना है। ये जो 4 तरह की साधना है उनको हम गोलोक एक्सप्रेस में प्रमोट करते हैं। वैसे इसके अलावा देखिए आप भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं, है ना, आप कोई शास्त्र रीडिंग कर सकते हो, भगवत गीता रीडिंग कर सकते हैं, उसके आप नोट्स बना सकते हो, जैसे अभी आप सत्संग सुन रहे हो इसके नोट्स बना सकते हो, टेम्पल जा सकते हो, तीर्थ स्थानों पर जा सकते हो, बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं जो आप कर सकते हो। तो साधना का पर्पल सिर्फ और सिर्फ क्या है कि ये जो हमारा मन है ना, इसको कहाँ से निकालना है, संसार से निकाल कर ना कहाँ लगाना है, प्रभु की भक्ति में लगाना है। देखिए भगवत गीता में ना चैप्टर 6 में अर्जुन जी ने कृष्णा जी को क्वेश्चन पुट किया था कि वायु को तो मैं कंट्रोल में कर सकता हूं, पर ये जो मन और श्रृंखल है बिगड़ा हुआ, इसको मैं कंट्रोल में नहीं कर सकता, ये तो असंभव है। बट कृष्णा ने इसका क्या आंसर दिया था, ये कठिन है पर इम्पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कृष्णा जी ने रेकमेंड की है उपयुक्त अभ्यास और विरक्ति, दो चीजें। वो जो उपयुक्त अभ्यास है ना, सूटेबल प्रैक्टिसेस, वो क्या है, वो साधना। तो ये जो कृष्णा जी कह रहे हैं वही हम आप लोगों के साथ आगे शेयर कर रहे हैं। ये जो सूटेबल प्रैक्टिसेस है साधना के, जो कंपोनेंट्स बताए गए हैं, इसको आप धीरे 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 धीरे, या जब आप करते जाओगे ग्रेजुअली, तो आप फील करोगे कि आपका मन आपके कहे अनुसार चलना शुरू हो जाता है। फिर आता है तीसरे नंबर पर जो हमारा पिल्लर है वो है सेवा। देखिए सेवा, सेवा जो वर्ड है वो संस्कृत भाषा का वर्ड है, वो 2 वर्ड से बना है, एक साहा और प्लस एवा। साहा का मतलब क्या है, विद दैट, उसके साथ, है ना, और एवा भी, उसके साथ भी, मींस टुगेदर विद, मींस हम जो हमारे मोदी जी नारा लगाते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, मींस सबको साथ में लेकर चलना, है ना, मींस सेवा टू सर्व करना, किसको सर्व करना, अपने स्वामी की सेवा के लिए कार्यरत रहना। तो भाई हमारे स्वामी कौन है, एज ए सोल हमारे परम पिता परमात्मा हमारे स्वामी है, तो हमने उनकी खुशी के लिए कार्य करने हैं। जो हम अपनी खुशी के लिए कार्य कर रहे थे ना पहले, उसको क्या करना है, रिवर्स, उसको रिवर्स कर देना है। अब हमने क्या करना, भगवान की खुशी के लिए कार्य करना है। तो देखिए भगवान कैसे खुश होते हैं, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, नर सेवा नारायण सेवा, तो नर सेवा कीजिए। नर सेवा मीन्स कि हमने अपनी सेल्फलेस जो हम कर रहे हैं ना कुछ भी, उसको हमने सॉरी जो हम सेल्फिश मोटिव के लिए कुछ कर रहे हैं उसको सेल्फलेस करना शुरू कर देना है, दूसरों के लिए करना शुरू कर देना है। देखिए हम क्यों दुखी रहते हैं, पता क्यों दुखी रहते हैं? क्योंकि हम ना जैसे ये प्रकृति चल रही है ना, हम उसके ओपोजिट ओपोजिट चल रहे हैं। कैसे? देखिए रहीम जी का बहुत प्यारा दोहा है, तरुवर फल ना खात है सरवर पिय ना पान। तो जो जितनी भी चीजें हैं ना हमारी प्रकृति की है ना, जैसे पेड़ है अपना फल खुद खाता है नहीं खाता है, वो हम सबको देता है। जो सरोवर है अपना पानी खुद पी जाता है नहीं पीता है। गाय दूध देती है खुद पी जाती है नहीं, वो हम सब। जितनी भी चीजें आप देखिए ना, वो सबकी सब खुद कभी भी कंज्यूम नहीं करते हैं। बट जो हम ह्यूमन बीइंग्स है ना, हम लोग है ना, जो हमारे पास है हम क्या कर रहे हैं, खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं। हमें जो हमारे पास है वो भी थोड़ा पड़ता है ना। तो हम खुद ही इतने कृपण है तभी हम दुखी हैं, क्योंकि जो हम एज ए सोल ना भगवान ने हमें बनाया है ऐसे देने के लिए, पर हम कैसे रहते हर टाइम लेने के लिए। तो सेवा का अर्थ क्या है? देना है, बांटना है। हमारे गोलोक एक्सप्रेस की टैगलाइन, शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज लव, एंड लव इज डिवोशन। तो भक्ति का दूसरा नाम क्या है? एक किस्म का शेयर कीजिए। देखिए भगवान जी क्या है, हमारे पेरेंट्स। तो पेरेंट्स को खुशी कब मिलती है? पेरेंट्स कब खुशी? जब पेरेंट्स के अगर दो या तीन बच्चे हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, पेरेंट्स खुश होते हैं। या फिर जब बच्चे एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं तब खुश होते हैं। भगवान जी जो पेरेंट्स हैं वो तभी खुश होते हैं जब भगवान का एक बच्चा दूसरे बच्चे की मदद करता है ना, तो भगवान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो सेवा हम बहुत तरह से कर सकते हैं, तन से मन से धन से, तीनों तरह से सेवा हम कर सकते हैं। उसके लिए ये नहीं सोचना है पहले कि भाई मेरे पास तो इतना है ही नहीं है तो मैं कैसे सेवा करूं। आप जहां पर भी है ना वहीं से शुरू कीजिए, जितनी आपकी कैपेसिटी उसके हिसाब से कीजिए। अगर किसी को लगता है कि मेरे पास फाइनेंशियली मैं इतना स्ट्रोंग नहीं हूं, मैं कैसे कहीं भंडारा कर सकता हूं जब कुछ, तो ठीक है आप भंडारा नहीं कर सकते हो। आपके घर में अगर आपकी मेड आ रही है उसको खाना खिला दीजिए है ना। बड़े बड़े दान नहीं कर रहे हैं, जो घर में आपके वर्कर हैं उनके बच्चों को पढ़ा दीजिए है ना, उनके लिए कोई गिफ्ट ले आइए। तो छोटी छोटी आप ऐसी चीजें कर सकते हैं। देखिए सेवा के लिए ना इम्पोर्टेंट होता है भाव, कि आपका भाव होना चाहिए। तो भगवान जी ये नहीं देखते हैं कि सेवा बड़ी की है या छोटी की है, भगवान जी सिर्फ और सिर्फ एक भक्त का प्रयास देखते हैं, उसके भाव देखते हैं। देखिए एक बार ना जब पुल बन रहा था ना रामायण में, जब लंका पार जाना था, तो हनुमान जी ना बड़ी बड़ी चट्टाने उठा रहे थे। तो जब वो चट्टान उठा रहे थे तो एक गिलहरी छोटी छोटी चट्टान लेके जा रही थी। तो हनुमान जी उसको, उनके पाँव में वो गिलहरी आ रही थी, हनुमान जी उसको ऐसे देख के व्यंग में थे कि क्या ये रास्ते में आ रही है, छोटी छोटी चट्टान लेके चली हुई है। तो राम भगवान उनको बताते हैं, तुम्हारी जो कैपेसिटी है वो है बड़ी चट्टान की, जो गिलहरी की कैपेसिटी है वो है छोटी चट्टान की। तो तुम किसी की सेवा को इग्नोर नहीं कर सकते हो, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सेवा कर रही है और तुम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सेवा। तो हमने भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से तन से भी हम सेवा कर सकते हैं, मंदिर वगैरह में जाकर या कहीं भी फिजिकली हम सेवा कर सकते हैं, मानसिक सेवा प्रेयर करके दूसरों के लिए है ना, माला डोनेट करके, जैसे हम आप लोगों को यहाँ पर कहते हैं तो माला डोनेट करके कर सकते हैं। तो धन से भी सेवा कर, हमने इस तरह से सेवा करनी है। देखिए सेवा हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहली सेवा जो हम करते हैं वो है हमें जो भगवान जी ने ना प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज दी हैं, एज ए हम कहेंगे कि हम जो बच्चे हैं एज ए पेरेंट्स हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज होती है भाई बहन, उन सारी ड्यूटीज को सेल्फलेसली करना है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस भगवान की खुशी के लिए है ना। बड़ों की सेवा कर रहे हैं, बदले में ये नहीं देखना है कि हमें क्या मिलने वाला है। तो अगर घर में हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, आज हमें उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो ये नहीं सोचना है कि हमें पड़ गया है, ये करना पड़ गया है घरों के काम करने पर। तो अपने आप को ब्लेस्ड मानिए कि हमसे भगवान जी घर में ही सेवा ले रहे हैं है ना। तो घर में ही पहली शुरुआत हमने की करनी है, सेवा भाव से सारी ड्यूटीज करनी है। और दूसरी फिर हमारी एक ड्यूटी होती है जो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक लेवल के रिलेशन ही चलने हैं, जो सोल लेवल के भी हमारे कुछ रिलेशन है, वासुदेव कुटुंब के अकॉर्डिंग हम सब भाई बहन है, तो सोशल वेलफेयर के लिए भी हमने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है। आप कहीं पर प्लांट लगा सकते हैं, वृद्ध आश्रम जा सकते हैं, है ना, अनाथ बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, मतलब कहीं भी किसी प्रकार की भी आप किसी भी सोशल मतलब वर्क में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, गौशाला में आप जाकर कर सकते हो, है ना। बट उसके लिए भाव कैसा होना चाहिए हमेशा याद रखना, मैं कर रहा हूं नहीं, ऐसा भाव नहीं रखना है, निमित्त मात्र का भाव। कैसे, जैसे रहीम जी कहते हैं, देन हार कोई और है, भेजल दिन भर रैन, लोग परम हम पर करे तासो नीचे नैन, कि देने वाले तो भगवान जी हैं, मैं कौन हूँ। भगवान ने सिर्फ और सिर्फ मुझे चुना है ये सेवा करने के लिए, मैं एक सिर्फ और सिर्फ एज एन इंस्ट्रूमेंट हूं, अपने आप को सिर्फ भगवान का एक इंस्ट्रूमेंट समझकर निमित्त मात्र भाव से हमने सेवा करनी है। मैं करने वाली कोई नहीं हूँ, प्रभु हमसे सेवा ले रहे हैं, इस तरह से मैं के भाव को त्याग करके हमने ये सारी सेवा करनी है। तभी वो जो सेवा सेवा कहलाती है, जब हम मैं के भाव से करेंगे वो सेवा नहीं रहती है, वो हमारे पुण्य के अकाउंट में जाती है, जन्म मरण के बंधन में हम फिर फंस जाएंगे, क्योंकि सेवा ही हमें जन्म मरण के बंधन से बाहर निकालती है। तो गोलोक एक्सप्रेस में हम सेवा कैसे कर सकते हैं भाई, जो आपको जहां पर सीख रहे हो शेयर कीजिए, बांटिए, वीडियो शेयर कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए दूसरों को। भगवत गीता में भी भगवान ने 18 चैप्टर के 68 वर्स में क्या कहा है, जो मेरा ये परम ज्ञान दूसरों को बांटता मैं उसको शुद्ध भक्ति का ज्ञान देता हूँ। तो समाज में आध्यात्मिक गरीबी है, उस आध्यात्मिक गरीबी को दूर करने के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए, जो सीख रहे हैं आगे सिखाइए। फिर उसके बाद आता है फ्रेंड सदाचार। देखिए, ये जो सदाचार है वो है गुड बिहेवियर, अच्छा आचरण, हमारा जो कंडक्ट है। देखिए, जो भी ये जो पहले वाले तीन जो हमारे पिलर्स हैं, सत्संग साधना सेवा को अच्छे से करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली उसका सदाचार अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी का सदाचार अच्छा नहीं हो रहा है, इट मींस उसने ये जो पहले वाले तीन पिलर्स को ना अच्छे से ग्रास्प नहीं किया है, अपने जीवन में उतारा नहीं है, तो हो सकता है वो मंदिर में जा रहा है बट फिजिकली है, जो हमने स्टार्टिंग में कहा, इंटरनली भगवान के साथ नहीं जुड़ा है, सिर्फ नेम और सेक के लिए ही वो सारी एक्टिविटीज कर रहा है। तो जो ये चीजें अच्छे से करेगा उसका आचरण अच्छा होगा ही होगा, उसकी डिवाइन क्वालिटीज बढ़ना शुरू हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, और उसके जो राक्षसी गुण है ना वो अपने आप डाउन होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, जो ये तीन चीजें अच्छे से करेगा उसको हर किसी में परमात्मा का रूप नजर आ जाएगा। वो उसको जैसे वो कहते हैं ना, वो कहा जाता है कि जैसे तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, वो उसका ऐसा भाव रहेगा, वो किसी का दिल नहीं दुखाएगा, हमेशा उसकी वाणी में मिठास रहेगी, दया भाव रहेगा, हेल्पिंग नेचर उसकी होना शुरू हो जाएगी। तो अगर देखिए, वैसे तो सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, टांग खींचने की आदत है, क्रिटिसाइज करने की आदत है, कभी कभार हमारा सच में बिहेवियर चेंज हो रहा होता है बट कुछ लोग ऐसे ही लेग पुलिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सेल्फ कंपैरिजन कीजिए आज से ही, जैसे हमने ये चार कंपोनेंट आपको समझाए पिलर, आज से ही अगर सत्संग साधना सेवा की तरफ आप बढ़ रहे हो ना, तो आज अपना ये बिहेवियर आज चेक कीजिए, फिर जब रेगुलरिटी से इसको करते जाओगे ना, तो 4 4 साल भी मैं ज्यादा ही कह रही हूँ, हार्डली 2 3 साल के बाद अब बैक जाकर देखना कि पहले मैं कैसी थी या कैसा था, अब मैं कैसा हो गया हूँ। सेल्फ कंपैरिजन कीजिए, फिर हमें किसी से भी अपनी असेसमेंट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें खुद ही पता चल जाएगा कि हम कितने ज्यादा चेंज हो चुके हैं, हमारे अंदर कितनी गुड क्वालिटीज आ गई। देखिए, जो हमारे अंदर चलता है ना वो हमें ही पता होता है, दूसरों को नहीं पता होता है। बाहर से तो हम कभी कभार बहुत अच्छा बिहेव कर देते हैं, अंदर जो हमारे कड़वाहट होती है दूसरों के प्रति वो हमें पता होती है, वो जो कड़वाहट इंटरनली जब चेंज होना शुरू हो जाती है तो फर्स्ट हमें ही पता चलता है। तो अपने सदाचार को भी हमने अच्छा रखना है, हमेशा याद रखना है कि भगवान के सीसीटीवी कैमरा ऊपर है, वो अंदर से भी हमें झांक रहे हैं, बाहर से भी हमें झांक रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम रेगुलरिटी से ये चारों चीजें करेंगे ना, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कब हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इतनी अच्छे से होना शुरू हो गई है कि हम वो जो कल टॉपिक आपने किया ना, कंप्लीटली हैप्पी, उस तरफ हम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो कंप्लीटली हैप्पी वाली जो हमारी स्टेज है वो अपने आप आना शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, फिर चलते हम कौन से रास्ते पर? सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार के दिव्य रास्ते पर चलते हैं और दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं। जो सीख रहे हैं दूसरों को भी सिखाते हैं, उनके लिए प्रेरणा बनते हैं, और जो हमारा समाज है ना उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, हैप्पी बनाने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। जो हमारा सपना है घर घर मंदिर, हर मन मंदिर में आगे बढ़ते हैं। तो सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार करते जाइए और आज के जीवन को भी आनंद से जिए। फिर आफ्टर, इसके बाद भगवान के धाम को भी प्राप्त कीजिए। श्रीमद् भगवद् गीता की जय हो। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, जय श्री कृष्ण एवरीवन। थैंक यू सो मच नीलू जी, बहुत ही प्यारा दिव्य सत्संग, बहुत ही ब्लिसफुल और नॉलेजफुल। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले कल समझा था कि हम सब जो है वो हैप्पी रहना चाहते हैं, पर हैप्पी रहने के लिए हम लोगों को कम्प्लीटली हेल्दी रहना पड़ेगा, है ना। तो कम्प्लीटली हेल्दी रहने के लिए हम लोगों ने 5 कंपोनेंट देखे थे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हमें बताया गया था स्पिरिचुअल हेल्थ। अब स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक तो करनी है, लेकिन कैसे करनी है उसको आज हमने नीलू जी के माध्यम से डिटेल में समझा कि आप अपने स्पिरिचुअल हेल्थ को कैसे ठीक कर सकते हो। अब जैसे अगर मान लो हम लोगों को ओवरऑल फिजिकल हेल्थ को ठीक करना है, तो हम डॉक्टर से समझते हैं कि आप विटामिन्स लो, न्यूट्रिय, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स लो, एक्सरसाइज करो, वाटर इनटेक करो, और उसको बैलेंस में जब हम लोग लेंगे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में, तो हम डेफिनेटली एक हेल्दी बॉडी को जो है वो अटेन कर सकते हैं। तो वैसे ही अगर मान लो हमने स्पिरिचुअल हेल्थ को अपनी ठीक करना है, तो उसके भी कंपोनेंट्स हैं, उस पर भी अगर हम बैलेंस तरीके से काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ भी ठीक होगी, और जब वो ठीक होगी तो ऑटोमेटिकली बाकी सभी हेल्थ जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो इसमें हम लोगों को बताया गया कि आपको 4 कंपोनेंट्स पर काम करना है, सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार, है ना। तो जब हम इन चारों पर बैलेंस्ड वे में काम करते हैं, तो डेफिनेटली हम लोगों की स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो ठीक होने वाली है। और साथ ही नीलू जी ने एक एग्जाम्पल दिया था कि हमने इनको एक पिलर्स की तरह लेना है। जैसे मटेरियल वर्ल्ड में एक रूम बनाना है, तो हमें 4 पिलर की जरूरत है, या 4 दीवारों की जरूरत है, उसके ऊपर छत डलती है और रूम तैयार हो जाता है। तो वैसे ही अगर हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपनी स्पेस बनानी है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपने आप को रहने के लिए एक जगह बनानी है, तो हमें 4 पिलर्स की जरूरत पड़ेगी, और वो होंगे सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार। जब ये पिलर इक्विलिब्रियम में खड़े हो जाएंगे अच्छे तरीके से, तो डेफिनेटली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हमारा एक रेजिडेंस, एक जो कमरा है, एक जो स्पेस है, वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। बहुत ही प्यारे तरीके से डिटेल्ड वे में नीलू जी ने हमें बताया कि सबसे पहले हम लोगों को काम करना है सत्संग के ऊपर, है ना। जैसे हम लोगों को अगर टीचर बनना है, तो सबसे पहले हम लोगों को स्कूलिंग की जरूरत है। अगर हम लोगों को कुक बनना है, तो हम लोगों को किचन के जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं उनको जानने की जरूरत है। तो अगर स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक करनी है, तो सबसे पहले हम लोगों को सत्संग करना है ना, एसोसिएशन ऑफ सत्य, एसोसिएशन ऑफ ट्रूथ, एसोसिएशन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। और एब्सोल्यूट ट्रूथ हम सभी को बताया गया कि वो केवल और केवल भगवान है, तो उनका साथ हम लोगों ने कैसे प्राप्त करना है, तो वो होगा डिवोटी एसोसिएशन के साथ। जिस तरीके से एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल हम लोगों को नीलू जी ने दिया, प्रहलाद महाराज, जो कि इतने टॉप मोस्ट लेवल के भक्त हैं, है ना, इतने प्योर डिवोटी हैं, उन्होंने भी फर्दर भगवान से यही मांगा कि हमेशा वो डिवोटी एसोसिएशन में रहें। और वो क्यों? सो दैट उनकी भक्ति जो है वो कभी भी ना डगमगाए और हमेशा वो अपलिफ्टमेंट की तरफ जाए। तो डिवोटी एसोसिएशन जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी से हम लोग जो हैं वो सत्य की तरफ हमेशा बढ़ते रहेंगे और हमेशा उसका साथ हमारे साथ रहेगा, है ना। और बहुत प्यारे प्यारे तरीके भी नीलू जी ने हमें बताए कि हम लोग जो हैं वो एक्सपर्ट्स जो हैं, हर एक फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो यहाँ पर भी एक्सपर्ट्स हैं। तो जो हमारे मेंटर हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो सत्संग साधना में आगे जा चुके हैं, उनके साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं, हम लोग जो है वो फिजिकली भी सत्संग अटेंड कर सकते हैं गुरुजनों का, है ना, टीवी पर, यूट्यूब पर देख सकते हैं, और साथ ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे हम अभी प्रेजेंटली कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग सत्संग को अटेंड कर सकते हैं गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से। और इससे क्या होगा, इससे होगा हमारे डाउट्स की क्लियरेंस होगी, सब्जेक्ट की नॉलेज आएगी कि कैसे हम लोगों को भगवान के साथ जुड़ना है, किस तरीके से हम लोगों को इस रास्ते पर चलना है, है ना। हमारी नेगेटिविटी डिक्रीज होगी, पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, और इसी तरीके से जब हम चलते रहेंगे तो हम लोग अपने अपने आप में पर्टिकुलर चेंजेस देखेंगे परसेंटेज वाइज, और फिर इस रास्ते पर आगे चलने लायक जो है वो बनेंगे। तो ये बहुत ही प्यारा एक कंपोनेंट है, बिल्कुल सत्संग अगर मैं अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ देखूं तो सत्संग सच में हम लोगों के अंदर ये चेंजेस लाता है, हमारी नेगेटिविटी डिक्रीज करती है, पॉजिटिविटी इंक्रीज करती है, सच में पता चलता है कि प्रभु की तरफ, सत्यता की तरफ, एब्सोल्यूट ट्रूथ की तरफ जाना कैसे है, कैसे हम लोग जो है वो भगवान के रास्ते पर चले, कौन से काम है जो हमें नहीं करने है, कौन से काम है जो करने है, किस तरीके के रूल्स को फॉलो करके इस लाइफ को जीना है। तो ये सच में बहुत ही मिरेकुलस जो है वो चेंजेस हमारी लाइफ में लेकर आता है। और फिर सत्य सत्संग के साथ जब हम चलते हैं तो ये हमें मोटिवेट करता है साधना की तरफ। और बड़ा प्यारा एग्जाम्पल नीलू जी ने हमें दिया कि सत्संग को मान लीजिए स्कूल और साधना को मान लीजिए होमवर्क। तो जैसे एक इंटेलिजेंट बच्चा या वो बच्चा जिसने, जो स्कॉलर है, जो बहुत अच्छी सी परसेंटेज लेकर के जो है वो अपने स्कूल में पास होता है, तो उसकी क्या डेली रूटीन होती है, वो स्कूल में तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता ही है लेकिन घर में जाकर उसको रिवाइज भी करता है, और वो रिवीजन जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करने में। क्योंकि जो मीडियोकर या एवरेज बच्चा है वो क्या करता है, टीचर की तो बात सुन लेता है लेकिन वो घर में जाकर के उस तरीके से रिवाइज नहीं करता है। फिर एग्जाम देती बार क्या होता है, लगता है यार ये पढ़ा तो था पर अब इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे लिखूं, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं है, रिविजन नहीं है, इसलिए वहां पर फिर अपने आप को एक्सप्रेस करने में मुश्किल आ जाती है। तो ये साधना जो है ये उसी तरीके का रिविजन है। अगर हमें भी ब्लिस में रहना है, हमें भी ट्रूथ हैप्पीनेस की तरफ जाना है, तो साधना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो साधना में हमें बहुत प्यारे प्यारे कंपोनेंट्स नीलू जी ने बताए, हम लोग नाम जाप कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, व्रत कर सकते हैं और आरती कर सकते हैं। नाम जाप जो है उन्होंने बताया हम स्ट्रक्चर्ड वे में भी कर सकते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड वे में भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही तरीके से हमें बहुत बहुत हेल्पफुल जो है वो रहेगा। भोग लगा सकते हैं और इससे क्या होगा, हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना आएगी, हमें समझ में आएगा कि भाई ये सब कुछ जो है वो परमपिता परमात्मा का ही है, हम उन्हीं से मांग करके जो है वो चीजें ग्रहण कर रहे हैं, हमने अपने आप को भोग विलास की तरफ नहीं लेके जाना है, भोगता केवल और केवल प्रभु है। और जब हम इस दृष्टिकोण से हर एक चीज ग्रहण करेंगे तो उसकी वाइब्रेशंस अलग हो जाएंगी और वो डिफरेंट वे में जो है हम लोगों की लाइफ में रोल प्ले करेगा। वही खाना जब हम अपने एंजॉयमेंट के लिए, सेंस प्लेजर के लिए खाएंगे तो वो जस्ट एक खाना है, और वही खाना जब हम प्रभु को भोग लगा करके प्रसाद रूप में खाएंगे तो वो बहुत बहुत ब्लिस और हम लोगों को पॉजिटिविटी देने वाला है। व्रत, व्रत किस लिए, सो दैट कि हम अपनी बॉडीली वे में फास्ट कर सके और स्पिरिचुअली हम लोग फीस्ट कर सके सोल के लेवल पर। तो इस तरीके से हम लोग और अपलिफ्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, साथ ही हम लोगों को अपने मन को जैसे कि कंट्रोल करने की भावना जो है वो आती है। और जब एक दिन या दो दिन हम लोग महीने में कर सकते हैं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हम लोग इसको और ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। और श्रृंगार सेवा, शास्त्र रीडिंग, ये सब चीजें जो है वो साधना के कंपोनेंट हमें बताए गए, तो इसको हम अपनी लाइफ में जरूर जरूर जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देन सेवा, सेवा टू सर्व, है ना, हमें सेल्फलेसली जब हम किसी के लिए काम करते हैं तो वो सेवा है, और निस्वार्थ भाव से। और हमें बहुत ही प्यारा एक वर्स एक बताया नीलू जी ने, नर सेवा नारायण सेवा। जब हम लोग हर एक रूप में प्रभु के दर्शन करते हैं, हर एक इंडिविजुअल की सेवा जो है वो इस भाव से करते हैं कि इन सभी के अंदर नारायण है, प्रभु बसते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी सेवा जो है वो प्रभु तक बहुत इजीली वे में जो है वो जा सकती है। अब हम डायरेक्टली प्रभु की एसोसिएशन फिजिकल लेवल में नहीं कर पा रहे, लेकिन जब हम अपने घर के इंडिविजुअल्स के साथ, अपने सोसाइटी में उनकी सेवा करते हैं, दैट मीन्स हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। तो धन के साथ तो सेवा हम सभी ने देखी है, हम लोग चैरिटी कर सकते हैं, हम लोग लंगर लगा सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं ना, ये सब कुछ तो हमने सुना है। पर अब बहुत ज्यादा सिचुएशंस में ऐसा होता है कि हमारे पास वो अमाउंट नहीं है जिस तरीके से हम लोग अपने मन से सेवा करना चाहते हैं ना। तो हम लोग तन से भी सेवा कर सकते हैं, हम लोग किसी की हेल्प कर सकते हैं, हम लोग फिजिकली अपनी स्ट्रेंथ दे करके कहीं पर लंगर हो रहा है तो वहां पर हम फिजिकल अपनी सेवाओं को दे सकते हैं, या कभी कोई इंडिविजुअल ऐसा है जिसको हमारी जरूरत है हम वहां पर सेवा कर सकते हैं। लेकिन मन मन से सेवा कैसी की जाए, ये हम लोगों को गोलोक एक्सप्रेस से पता चला। हम प्रेयर्स कर सकते हैं, है ना, वो मन से ही सेवा है। तो ये मन से सेवा जो एक नया कॉन्सेप्ट मुझे गोलोक एक्सप्रेस से ही पता चला है। सुना तो था तन मन धन से सेवा करनी है, पर मन से कैसे करनी है वो इस तरीके से कि किसी को हमने अगर मुश्किल में देखा है, हम लोग तन से या धन से उसकी सेवा नहीं कर सकते, तो हम प्रेयर्स कर सकते हैं। और प्रेयर्स में इतनी ताकत है जो कि तन और धन में भी नहीं है ना। तो हम लोग इस तरीके से अपने आप को तैयार कर सकते हैं और सोसाइटी में अपना जो है वो योगदान दे सकते हैं पॉजिटिविटी की तरफ और सदाचार। जब ये तीनों कंपोनेंट हमारी लाइफ में बहुत अच्छे से वर्क करेंगे, सत्संग, साधना, सेवा, तो सदाचार ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में आ जाएगा और हम उस तरीके से जिएंगे जैसे प्रभु हमारे से एक्सेप्ट करते एक्सपेक्ट करते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग जो हैं हम वो अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ में बहुत वंडरफुल कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, और देन आगे की सारी जो हमारी हेल्थ है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। तो बहुत ही प्यारा सत्संग नीलू जी, और बहुत आनंद आया फ्रेंड्स हमारे साथ आज स्टूडियो में। राजेंद्र जी भी हैं जुगियाल से, हम उनसे समझते हैं इस टॉपिक के बारे में। हरी हरी बोल जी।
धन्यवाद ईशा जी, धन्यवाद नीलू जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य और बड़े ही अच्छे टॉपिक के ऊपर गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से हम अपने भाव यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है कि अध्यात्म के चार स्तंभ, जैसे अभी ईशा जी ने बोला कि कोई भी जो अध्यात्म की जो बिल्डिंग है उसे बनाने के लिए चार दीवारें चाहिए, उसी तरह अध्यात्म जब हम बोलते हैं कि हम आध्यात्मिक हो गए हैं, जहां हमें आध्यात्मिक होना है, तो उस बिल्डिंग को अध्यात्म की को बनाने के लिए हमें चार फोर पिलर्स जो हैं वो गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से हमें सिखाए गए हैं कि चार अध्यात्म के स्थान क्या हैं। सत्संग जो इसकी पहला जो इसका पिलर है वो सत्संग है, फिर उसके बाद साधना, उसके बाद सेवा और उसके बाद सदा। तो ये बिल्डिंग तभी खड़ी हो सकती है अध्यात्म की, तभी हम अपने आप को या कुछ अध्यात्मिक थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि हम अध्यात्मिक हैं या अध्यात्मिक हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो पिलर है, चलो सत्संग की बात जैसे अभी सभी ने की, तो बिल्कुल मैं जब तक नहीं जुड़ा था गोलोक एक्सप्रेस के साथ, तो मैं भी यही सोचता था कि जैसे ये जो सत्संग है ये औरतें वगैरह ही करती हैं, वहां पे ताड़ी वगैरह बजाती हैं मंदिरों में जाके, तो उसको सत्संग बोल देते हैं, जहाँ कहीं मंदिरों गुरुद्वारों में या किसी और स्थानों के ऊपर तो करते हैं लोग, तो वो सत्संग है। लेकिन अब ज्ञान क्योंकि असीम है, जब तक आप गुरु के साथ नहीं जुड़ते हैं या किसी एसोसिएशन के साथ नहीं जुड़ते हैं, तो वो कभी भी आप उसमें परफेक्ट नहीं होते हैं। तो जैसे ही जुड़े हैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ, तो अब पता चल रहा है कि नहीं, आध्यात्मिक होने के लिए ये चार चीजें आदमी में पहले होनी चाहिए, देन ही वो अपने आप को थोड़ा कह सकता है कि मैं आध्यात्मिक हो रहा हूं या मैं आध्यात्मिक के साथ जुड़ा हूँ। तो सत्संग उसका पहला है, बिल्कुल सबसे पहला उसका अंग जो है सत्संग है। तो अब जब हम देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, इस वक्त सारे इंस्टीट्यूशन इस गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से यूट्यूब के ऊपर जुड़े हुए हैं, तो क्या कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। तो एक मतलब भगवान को सेंटर में लाके हम भगवान की बातें, अच्छी बातें जो मनुष्य बनने के लिए जरूरी हैं, कहाँ से हम सीख रहे हैं, सत्संग के माध्यम सीख रहे हैं। जैसे हम घर के ऊपर, घर के साथ, घर में रहकर भी अब सत्संग गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि इसका टेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड है, हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो हम रामायण और जहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता जी की जो जो टीचिंग्स है उनको हमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, और हम जहाँ से अपनी लाइफ में उसके साथ उसको इम्प्लीमेंट करके अपने अंदर जो है बदलाव देखे हैं, भक्तों का संग हमें मिल रहा है, हमें राइट डायरेक्शन मिल रही है, तो वर्क प्लेस के ऊपर मतलब हमें बहुत हेल्प हो रही है कि किस तरह का जीवन हमने जीना है, वो सब कहाँ से हो रहा है, वो डिवोटी एसोसिएशन के साथ जुड़ के ही, एक दूसरे को देख के, भक्तों का संग करके, मतलब एक पावर मिलती है, जिसे कहते हैं ना, हम सब भेड़ चाली से चलते हैं सारी जिंदगी, हम देखते हैं, जब हम देखते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में। तो सत्संग बहुत जरूरी है, मतलब सत्य का संग मतलब भगवान का संग, सत्य का संग मतलब भगवान के जो भक्ति करने वाले लोग हैं उनका संग। तो ये इक्वल ही है कि हमें भक्तों का संग करना चाहिए, अगर हमने इंसान बनना है सही, अगर हमने इस कलयुग से मतलब कुछ, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है सत्संग कलयुग में जीवन को विज्ञापन करना, तो सत्संग उसका जो है वो बहुत जरूरी है, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। जो पहला जो स्कूल है हमारा अध्यात्म की तरफ पढ़ने, वो सत्संग है। तो सत्संग करेंगे है ना, हर डेली भगवान की बातें सुनेंगे तो उसके ऊपर चलने का प्रयास करेंगे, तो उसके बाद साधना आ जाता है। अगला स्टेप जो है वो सीधा हमारा सत्संग के बाद साधना आ जाता है। हम जैसे फर्स्ट क्लास में होते हैं तो सेकंड में जाते हैं, तो उसके बाद अगला स्टेप जो हमारा जो हमने करना है वो है आ जाता है साधना। तो साधना में क्या आता है, जैसे कलयुग में सुना है हम सबने है कि हम मैंने नाम जप ले लिया है, लेकिन नाम जप गुरु से ले लिया है लेकिन हम लोग जपते नहीं है नाम को, भगवान के नाम को। मैंने देखा है कि बहुत सारे, मैं देखता हूँ कि लिया है लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो सिर्फ मतलब माथा टेकने से ज्यादा या कुछ कर नहीं रहे हैं भगवान का ना। लेकिन क्योंकि जहाँ गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के हमारे मेंटर्स ने हमें बहुत डीप नॉलेज जो है वो अध्यात्म के बारे में दिया है, बहुत हम ब्लेस्ड हैं सारे, कि हमें जो नाम जब दिया उसको जपना है भी। जब आप दवाई दी है हमें, तो अगर हम उसको खाएंगे नहीं है ना, तो वो फर्क कैसे पड़ेगा, अगर रखी रखेंगे दवाई को। तो अब जहां पे हमें जप करना, जैसे सनातन में हमें व्रत करना, और भी जो धर्म है उनमें मतलब व्रत चलते हैं, तो इनका सबका महत्व है। तो वो हमें जहाँ पे सिखाया जाता है कि अब हम जहाँ पे जप करते हैं, हरे, जैसे मैं हमारे गुरु ने हमें महामंत्र दिया, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र को मैं अपनी माला पे जपता हूँ, तो इस गोली को खाने से मेरे जीवन में मतलब जिसे कहते हैं हर गोली का अपना एक उससे चेंज आता है लाइफ में। तो अगर आप इसको करेंगे तो आप जैसे ना गोल मेलोडी खाओ तो खुद जान जाओ, जब आप करोगे ना इसको जब माला को, तो देन आपको पता चलेगा कि इसके फायदे क्या है। जो करेगा नहीं तो बहुत तो उसका मजाक जरूर उड़ाएगा। तो उसके बाद हमें डिसिप्लिन में आते हैं, हमें इससे जैसे व्रत करते हैं हम, तो व्रत से भी मन को रोकने का साधना हमें जो है इससे आती है ना। हम भोजन को रोक पाते हैं, तो अपने मन को काबू करने के लिए व्रत का बहुत महत्व। वैसे मुझे पहले पता नहीं था कि व्रत का क्या मतलब है, लेकिन अब पता चल रहा है कि व्रत से मन काबू में आता है, इसलिए व्रत करने की प्रैक्टिस हमें सिखाई जाती है। तो पहले तो मैं इसको औरतों के लिए जहाँ मतलब सोचता था कि बूढ़ों का काम है, हमारे लिए जो यंग जनरेशन में भी हमें जुड़ता, हम जगह जगह अपने मन को कहीं भी मतलब समेटना है हमें अपने आप को, तो ये यंग एज में बहुत जरूरी है कि हम कहाँ पे कंट्रोल करना है अपने आप को, हमें जहां से सिखाया गया है। तो व्रत का इससे मुझे बहुत लाभ मिला है, नेगेटिव हैबिट्स से बचने के लिए, तो ये बहुत जरूरी है। और ये साधना में आता है, उसके बाद सेवा में आता है। तो भगवान की खुशी के लिए जब हम कोई मतलब कर रहे हैं, तो अब जहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, जहां पे हम सब, अब गोलोक एक्सप्रेस ने हमें क्या जगह सेवा भी, अगर हमने अपने अंदर चेंजेस देखे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे रिव्यू देके लाइव हो गए, वो सेवा आ रही है हमारी, लोग हमें सुन पा रहे हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड है। तो घर बैठे कहीं बिना गए, न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से, न्यू मेथड जो निखिल जी ने न्यू टेक्नोलॉजी से ये खड़ा किया है गोलोक एक्सप्रेस, इससे के माध्यम से हम सेवा कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पे रिव्यू दे रहा हूँ, अगर कोई सुनेगा तो उसकी जिंदगी में इसको अगर वो इम्प्लीमेंट करेगा तो वो एक सेवा हो गई मेरे माध्यम से, घर बैठे बिना कोई खर्च किए बिना कहीं गए। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी मेथड से हम सेवा कर पा रहे हैं। और उस जैसे हम लड्डू गोपाल जी की, वो घर बैठे तो बहुत सारी कर सकते हैं हम, जैसे घर घर में लोगों ने लड्डू गोपाल जी रखे होते हैं, कोई किसी की सेवा कर रहा है, मंदिरों में जाके कर सकते हैं, हॉस्पिटलों में कर सकते हैं, गौशाला में जाके कर सकते हैं, सेवा के तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। कहीं किसी दुखी की सहायता कर सकते हैं, पैसे के माध्यम से कर सकते हैं, एंडलेस है, लंगर लगा के कर सकते हैं। तो जब आप ये सारे सेवा और सत्संग और साधना करेंगे तो सेवा भाव आपके अंदर डेफिनेटली आएगा, ये नेचुरली अगला स्टेप है, ये आएगा। और सदाचार, जब ये तीनों करेंगे तो उसके बाद आपके जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन तो हो आए बिना रह नहीं सकते। जैसे आप पेड़ लगाते हैं तो बड़ा हो जाता है तो फल उसको लगने ही है, वैसे ही सदाचार, जब आप तीनों पे चलेंगे तो सदाचार आपके जीवन में झलकेगा, आपके हर मतलब शरीर के ऊपर या आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को वो लोगों को देखने को मिलेगा कि आपके जीवन में बदलाव आए हैं, आप सत्ते पे चलने शुरू हो गए हैं, आप अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, घर की ड्यूटीज को, और समाज में भी आप परिवर्तन ला पा रहे हैं, आप वृक्ष लगा रहे हैं, मतलब सदाचार, मतलब आप अच्छी क्वालिटी आप में दिखना शुरू हो जाएंगी, किसी जरूरतमंद को आप सहायता करने के लिए आगे तत्पर रहते हैं हमेशा, तो वो सब क्वालिटीज आप में आएंगी। बहुत ही बढ़िया सत्संग, बहुत कुछ बोलने को है लेकिन क्योंकि समय की लिमिट है तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को आज विराम दूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
हरी हरी बोल राजेंद्र जी, बहुत ही आनंद आया आपको सुन करके। बहुत प्रैक्टिकल वे में हमेशा आप अपने रिव्यूज रखते हैं और बिल्कुल सत्संग साधना सेवा सदाचार, ये बहुत ही वंडरफुल तरीके से आपने बताया अपनी लाइफ से जोड़ करके। और ये गोली बहुत प्यारा एग्जांपल, हर एक गोली का एक अपना इफेक्ट है ना। मेटफॉर्मिन है आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल करेगा, डिस्प्रिन है वो आपकी सिर दर्द को ठीक करेगी, है ना। इसी तरीके से हर एक गोली, तो वैसे नाम जाप की गोली है वो आपके अंदर के विकारों को ठीक करेगी, ये जो भटका हुआ मन है ना, अड़ियल मन है, इसको ठीक करेगी और हम लोगों को ब्लिस की तरफ लेकर के जाएगी और प्रभु की तरफ लेके जाएगी, परमानेंट आनंद की तरफ लेके जाएगी। थैंक यू सो मच राजेंद्र जी। हमारे साथ शिप्रा कटोच जी है और जानते हैं उनके अनुभव इस मॉडल के ऊपर। हरी हरि बोल।
हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू नीलू जी, ईसा जी और जिंदर जी, बहुत प्यारा जो है टॉपिक। मैं निखिल भैया का थैंक्स करूंगी, नितिन भैया प्रीति जी का, कि उन्होंने इतने प्यारे प्यारे मॉडल बनाए हैं कि हम लोगों की लाइफ को इतना इजी कर दिया है कि अब डिवोशन के पाथ पर चल सकें। तो जैसा कि कल स्पिरिचुअल के बारे में जाना, तो आज हम जो है फॉरेस्ट पिलर के लिए बारे में जान रहे हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी कि हमने अगर मटेरियल वर्ल्ड में रहना है तो उसके लिए एक छत चाहिए होती है, उसके लिए फोर पिलर की जरूरत होती है। वैसे ही हमें अध्यात्म के वर्ल्ड में भी फोर पिलर की जरूरत होती है, जिसके बेस पे हम जो है भगवान अपने भगवान के धाम में एक जो है जा सकते हैं और वहां पे अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। और वो फोर पिलर है सत्संग साधना सेवा सदाचार। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा मॉडल सत्संग, सत प्लस संग। तो जो सब तो हम सभी अब ये जान गए हैं, पहले हम लोग क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में तो हमें ये लगता था ये भी मतलब अपना सब कुछ वैसे ही लगता था, बट सब कुछ सच्चाई है। सच्चाई कुछ भी नहीं है वर्ल्ड में, जो भी इस दुखाले में आया है वो सब नश्वर है, नाशवान है। सच सिर्फ और सिर्फ एक ही है, श्री हरि भगवान ही सत्य है। तो सत के संग हमें भगवान की एसोसिएशन करनी है। भगवान मतलब वो कैसे होगी, डिवोटी एसोसिएशन के साथ। जब हम डिवोटी एसोसिएशन के साथ बैठेंगे, कहीं इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, अच्छे से हम अपना ध्यान जो है, क्योंकि अब जैसे कि अब हम लोग बैठे हुए हैं, लाइव चल रहे हैं, हम इस टाइम क्या कर रहे हैं, हम भक्तों की, भगवान की बात कर रहे हैं, भक्तों के श्रीमुख से बातें सुन रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है हमारी थोड़ी देर के लिए तो हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है, यहाँ वहां की बातें जो है वो हम जो है भूल जाते हैं। जैसे हम लोग सत्संग पहले यही था दिमाग में कि कीर्तन कर लिया, भजन गा लिए, मंदिर चले गए, वहां पे कीर्तन कर लिया, पर क्या हम प्रॉपरली वहां पे बैठ पाते थे? कभी नहीं। हम लोगों को चाहे हम मंदिर में सत्संग में गए हों, कीर्तन कर रहे हों, पर अगर हमारा ध्यान ही वहां पे नहीं है तो उसका फायदा कुछ नहीं है। और अभी हम घर बैठे इस ऑनलाइन वेद पे जो है वो सत्संग कर रहे हैं, भगवान की तरफ जो है अपना ध्यान लगा रहे हैं, डिवोटी एसोसिएशन की बात सुन रहे हैं, तो हम जो है वो सत्संग की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। और इसके जैसे कि नवदा भक्ति हम जानते हैं सभी, तो श्रवण करना और कीर्तन करना बहुत बड़ी बात है, उस पर इम्प्लीमेंट करना। जैसे कि हम लोग जो है वो हमेशा हर कोई, जैसे हम अभी सभी बता रहे थे कि हम लोग हैप्पीनेस चाहते हैं, तो हैप्पीनेस तो हमें तभी मिलेगी जब हम एक सत्य के मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि असल सत्य तो भगवान है। और जब उस मार्ग पर चलेंगे तो हम जो है वो खुद को जो है वो सच्चाई के मार्ग पर चलाकर खुश रख सकते हैं। जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है साधना, तो सही बात है कि मन को साधना जो है वो तो बहुत बहुत मुश्किल है, मन बहुत चंचल है, बहुत जिद्दी है, पर एक साधना, एक चैंटिंग ऐसी है जिसके कारण हम कुछ देर के लिए भी अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने निखिल भी अक्सर ये बोलते हैं, सभी बोलते हैं डिवोटी जो हमारे मेंटर हैं, कि अगर मन लगे ना लगे, क्योंकि स्वयं अर्जुन जो एक महान मतलब व्यक्तित्व के थे, तो फिर वो अगर मन के लिए बोल सकते हैं कि वो हवा को काबू कर सकते हैं, मन को नहीं, तो हम तो कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन मुझे नीलू जी का ये एग्जाम्पल बहुत प्यारा लगा कि हम वाकई में मन को मारते हैं। किस दिन, जिस दिन हमने फास्टिंग की होती है, वो भी हमने हम गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से ही जाना कि हमने फास्टिंग फॉर बॉडी और फीस्टिंग फॉर सोल करना है। जैसे कि अक्सर जिस दिन हमारा फास्ट नहीं होता है, हमने कुछ चीज रखी है उसको खा लिया पी लिया, बट जिस दिन फास्ट होता है, जिस दिन हमने व्रत रखा होता है, हम कैसे मन को मना लेते हैं, नहीं ये चीज नहीं खानी है, हमने फास्ट रखा हुआ है। तो वैसे जब हम इस चीज को, अपने मन को कंट्रोल करना धीरे धीरे सीख लेते हैं, तो वो कैसे एक चाहे 2 सेकंड के लिए हमारा मन कभी ना कभी तो भगवान के उसमें लगेगा। तो हमें जो है वो रेगुलरिटी के साथ चैंटिंग करनी है, हमें फास्ट करना है, आरती करनी है, ऐसे हम अपने मन को जो है डिवोशनल एक्टिविटी में लगा सकते हैं, जिससे कि ये बिगड़ा हुआ बच्चा जो है वो अपने सही रास्ते पर चल पाए। जबकि जैसे सेवा के लिए बोला, हमारा जो थर्ड जो कंपोनेंट है सेवा, तो सच में सेवा पहले यही दिमाग में होता था कि इसके लिए तो बहुत सारा धन चाहिए, इसकी जरूरत होती है। तो सेवा तन मन धन कैसे भी हो सकती है, हम मन से इसी के लिए प्रेयर करते हैं। जैसे कि हमारे गोलोक एक्सप्रेस में बताया जाता है कि आप किसी के लिए माला डोनेट करो, बहुत बड़ी सेवा होती है ना। जान कोई नॉन पर्सन है, कोई हमारे रिलेटिव है, उसके लिए तो हम चलो कुछ हेल्प कर देते हैं, कुछ थोड़ी बहुत जो बन पाती है, बट जब किसी अननोन के लिए हम जो प्रेयर करते हैं ना, उसका जो सुकून मिलता है। और जब हम लोगों को जैसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी के लिए प्रेयर करते हैं, और जब उसके अच्छे होने की या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने का पता चलता है, तो एक जो अंदर से जो फीलिंग आती है कि नहीं ये चीज हो पा रही है, और क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि हमें हमेशा निमित मात्र से रहना है, कभी ये भाव कभी भी नहीं लाने हैं कि हम कर रहे हैं, हम कब कोई नहीं है करने वाले, भगवान ने इंस्ट्रूमेंट बनाया होता है। तो हमें किसी के लिए भी जो है वो अपने दिल में जो है वो सभी के लिए ये से भाव आने चाहिए कि प्रभु आप ना सभी को अपने जो है पथ पे चलाइए, सभी के लिए जो है भगवान के रास्ता रास्ते पर चलने की जो है वो आप ही बुद्धि दे सकते हैं। हम लोग क्योंकि अज्ञानी हैं, मूढ़मती हैं, हम लोग तो ये चीजें बिल्कुल भी नहीं समझ पाते, पर जब भगवान हमारे मन में होंगे, हमारे हृदय में होंगे, जब हमारी स्पिरिचुअल जो हेल्थ है वो ठीक होगी, तो हम लोग जो हैं एक दूसरे के लिए एक अच्छी वाइब्रेशन हम निकालते हैं, हम सेवा भाव से कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें किसी मौके की तलाश की जरूरत नहीं, हम हर पल हर पल। आप आजकल गर्मियां हैं, आप अगर छत पे पानी रख दे रहे हैं पंछियों के लिए, तो वो भी एक सेवा हो रही है। क्योंकि सही बात है कि ये वासुदेव कुटुंब है, सभी जीव जंतु प्राणी जो भी हैं वो भगवान के ही बच्चे हैं, तो हमें भगवान की सेवा करनी है। और वैसे ही जो सदाचार की बात करूं, तो सदाचार अगर हम इस तीनों चीजें हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारा जो वाणी है उसमें मधुरता आएगी। और सही बात है कि हमें कंपैरिजन दूसरों से नहीं करवाना है, हमें खुद से खुद का कंपैरिजन करना है। और इस चीज को हम बहुत अच्छे से रियलाइज करते हैं कि हम पहले क्या थे, आज क्या हैं, और अगर ऐसे ही हम डिवोशन के रास्ते पर चलते रहे, तो आने वाले दिनों में हमारी जो ये सदाचार बात है वो ज्यादा हम लोग जो उस पर फोकस कर पाएंगे, और अपने आप में ये सब चीजें हमने इम्प्लीमेंट करनी है, रेगुलरिटी के साथ जो है सत्संग साधना पर बर करना है। और थैंक यू सो मच निखिल भैया, नितिन भैया, प्रीति जी, रूपाली जी, जो आपने इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया, और ये सब बातें जो हमें शायद पहले कभी पता ही नहीं चलती अगर हम गोलोक एक्सप्रेस से नहीं जुड़े होते। तो थैंक यू सो मच नीलू जी, ईशा जी, रजिंद्र जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हरी हरी बोल जी।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल शिप्रा जी, आपके पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर के भी बहुत ही आनंद आया। और बिल्कुल सेल्फ कंपैरिजन करना है ना, जब सदाचार के रास्ते पर हम चल पड़े, जब भक्ति के रास्ते पर हम चल पड़े, तो अब जैसे हम स्टडिंग के रास्ते में चल रहे हैं, तो इवेल्युएशन होती है एनुअल एग्जाम से, हम एक क्लास से दूसरी क्लास की तरफ जाते हैं, भक्ति में भी तो इवेल्युएशन की जरूरत पड़ेगी। और इवेल्युएशन की जरूरत क्यों, ताकि हम अपने आप को मोटिवेटेड फील कर सकें और आगे चलने के लिए हम लोग और स्पीड से और उत्साह के साथ चल सकें। तो ये इवेल्युएशन कौन करेगा, ये इवेल्युएशन करेंगे हमारे गुरुजी, हमारे गाइड मेंटर, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंटली सेल्फ इवेल्युएशन की बात यहाँ पर शिप्रा जी ने की है। बिल्कुल जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें हमारा स्टमक बता देता है कि बस अब हो गया, आपका पेट फुल है है ना। वैसे जब हम सेल्फ इवेल्युएशन करते हैं ना, तो हमें पता है कि हमारे में परसेंटेज में कितने नेगेटिविटीज पहले थी और अब कितना वर्क हम कर चुके हैं उसके ऊपर। तो ये बहुत ही प्यारा ट्रिक है कि हम लोग अपने आप को इवेल्युएट कर सके और अपने आप को और मोटिवेटेड कर सके इस रास्ते की ओर चलने के लिए और इस रास्ते पर और स्पीडली और ब्यूटीफुली जो है वो आगे बढ़ने के लिए। बहुत ही प्यारे रिव्यू शिप्रा जी। और साथ ही फ्रेंड्स, हम सभी गोलोकियंस आपकी सेवा के लिए हाजिर है। आप सबके लिए हम प्रेयर्स करेंगे, माला जाप करेंगे। मैं पहले भी बोलना चाहती थी, सॉरी मैं भूल गई। आप सभी किसी भी फील्ड में अपने अपने लिए, अपने परिवार जनों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए प्रेयर्स करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। हम सभी गोलोकियंस और आप सभी भी ये सेवा जो है वो आज कर सकते हैं। हमने आज ये टॉपिक पढ़ा है कि हम अपने मन से, अपनी प्रेयर से भी सेवा कर सकते हैं, तो क्यों ना आज हम सभी के लिए प्रेयर्स करें, है ना। जिस भी फील्ड में कोई इंडिविजुअल प्रेयर्स करवाना चाहते हैं वो लिखिए और हम सभी सच्चे दिल से आप लोगों के लिए प्रेयर्स करेंगे और प्रभु के रास्ते में सेवा को अर्पण करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, चंबा रेणु जी के पास, और आज का भजन उनके श्रीमुख से सुनते हैं। हरी हरि बोल।
हरी हरि बोल। हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच नीलू जी और ईशा जी। बहुत प्यारा टॉपिक चल रहा था और बहुत प्यारे रिव्यूज सभी डिवोटीज ने भी दिए। मैं क्विकली यही कहना चाहूंगी कि जो सत्संग है, साधना, सेवा, सदाचार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे आध्यात्मिक पाथ में, हमारी जो जर्नी है उसको आगे बढ़ाने के लिए। जितना जितना हम सत्संग करते जाएंगे, हमारे अंदर पात्रता तैयार होगी। पात्रता कौन सी? जैसे एक बर्तन होता है ना, उसके अंदर जितना बड़ा बर्तन होगा उतनी ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज हम रख पाएंगे। जितना पात्र तैयार होगा उतना ही साधना के रूप में हम नाम जाप, भोग, एकादशी, इन सब को उस पात्र में स्टोर करेंगे। किसके लिए? ताकि जो हमारा शाश्वत धर्म सेवा है, जो कि हम भूल चुके हैं अपनी पोल्यूटेड डिजायर के कारण, जो भगवान जी से द्रोह करके इस संसार में आए हैं, उस सेवा को वो जागृत करेगा। आज यहाँ पर इस धरा पर सेवा करना सीखेंगे तभी तो भगवान के धाम में जाकर सेवा कर पाएंगे। और वो कैसे होगा? रेगुलर सत्संग, सेवा, साधना से हमारा बिहेवियर सुधरेगा। फिर भगवान की गुड बुक्स में आएंगे कि भगवान देखेंगे कि ये मेरा बच्चा फिर से प्रयास कर रहा है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब इसके अंदर पात्रता भी तैयार हो गई है, थोड़ा इसमें अंदर सत्संग सेवा साधना से जोश भी भर रहा है मेरे रास्ते में आने के लिए, तो मैं इसको वापस ले लेता हूँ। तो इन सब को करवाने के लिए हम किसका आभार व्यक्त करें? हमारे गुरुओं का। ये गुरु ही हैं जो हमारे अंदर इन फोर पिलर्स को क्रिएट करते हैं ताकि हम वापस, जैसे नीलू जी कह रहे थे ना फोर्थ चैप्टर में, गुरु ने सत्य का दर्शन किया होता है तभी वो हमें भी सत्य के रास्ते में आगे प्रेरित करते हैं। तो आज इस भजन के माध्यम से मैं अपने गुरुदेव, अपने मेंटर्स, इनके चरणों का ही आभार व्यक्त करना चाहूंगी जो ये पिलर्स हमारे अंदर क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, भजन की तरफ चलते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव मेरे भगवन, मुझको ऐसा वर दो। गुरुदेव मेरे भगवन, मुझको ऐसा वर दो। सेवा सुमिरन सत्संग, झोली में मेरी भर दो। सेवा सुमरन सत्संग, झोली में मेरी भर दो। नफरत जो करे हमसे, हम उनसे प्यार करें। जो चाहे हमारा बुरा, हम उनका सत्कार करें। नफरत की मिटा करके तू प्यार का रंग भर दे। नफरत को मिटा करके प्यार का रंग भर दे, सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरी भर दे। गुरुदेव मेरे भगवन, मुझको ऐसा वर दे, मेरे मन मंदिर में गुरु जी तुम ही बस बस जाओ, जिस ओर तुम्हें देखूं बस तुम ही नजर आओ, तेरा नाम सुमर करके जीवन को सफल कर लूं, तेरा नाम सुमर करके जीवन को सफल कर लूं, सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरी भर दो। गुरुदेव मेरे भगवन, मुझको ऐसा वर दो, इस नीरस जीवन में एक तेरा सहारा है। मैं सच कहती हूँ प्रभु जी, तू प्राणों से प्यारा है। हम सच कहते हैं प्रभुवर, तुम प्राणों से प्यारे हो, इस बेरंग जीवन में प्रभु प्रेम के रंग भर दो, इस बेरंग जीवन में प्रभु प्रेम के रंग भर दो, सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरी भर दो। सेवा हो शबरी सी और मेरा जैसी हो, श्रद्धा हो तुलसी सी और बोल कबीरा से, इस दासी की अर्जी, इस दासी की अर्जी सतगुरु पूरी कर दो, सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरी भर दो। गुरुदेव मेरे भगवन, मुझको ऐसा वर दो, सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरी भर दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। थैंक यू सो मच। हरि बोल हरि हरि बोल
हरी हरी बोल, बहुत प्यारा भजन और आज के टॉपिक के साथ बिल्कुल रिलेट करके आपने रेणु जी शेयर किया, बहुत आनंद आया। आज बहुत प्यारी होस्टिंग आपने की ईशा जी, थैंक यू सो मच। रजिंदर जी और शिप्रा जी, आपने बहुत ब्यूटीफुली अपने जो लर्निंग्स थी आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट करके शेयर की। तो फ्रेंड्स, कल हम फिर मिलेंगे एक बहुत प्यारे मॉडल के साथ, ABCD मॉडल फॉर सुपर पॉजिटिव लाइफ, और बहुत ही स्वीट सीनियर मेंटर इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड, कल मिलते हैं 5 AM IST। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा,
हरे राम हरे हरे, घर घर
हरे राम
हर मन मंदिर,
घर घर
राम राम हरे हरे
हर मन मंदिर,
घर घर।
गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए आप हमारे ईमेल एड्रेस info@golokexpress.org द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर 7018026821 से भी जुड़ सकते हैं। आप हमसे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरी हरी बोल।